आप सुन रहे हैं उपन्यास मैला आंचल, जिसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु और इसे स्वर दिया है आपके अपने दीपक यादव ने। हर गौरी की मां रो रही है, राजा बेटा रे, गौरी बेटा रे। हर गौरी की 16 साल की स्त्री बिना गौना की ही आई है। वो बहुत धीरे धीरे रोती है, घूंघट के नीचे उसकी आंखें हमेशा बरसती रहती हैं। शिवशंकर सिंह पूर्णिया से लौट आए हैं। पुत्र का दाह कर्म करके लौटे हुए पिता को देखकर डर लगता है। झुकी कमर पर हाथ रख शिवशंकर सिंह बैलों की ओर देख रहे हैं। दिनों से घास पानी छोड़े बैठे हैं दोनों बैल। आंखों में आंसू भर भर कर दोनों कभी कभी चौकन्ना होकर इधर उधर देखते हैं, फिर एक लंबी सांस लेकर एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को जीभ से चाटते हैं, मानो ढाड़स बंधा रहे हों। हरगौरी इन्हें कितना प्यार करता था। जब ये 2 साल के बाछे थे तभी से हरगौरी इनके साथ खेलता था। उसकी बोली सुनते ही दोनों खुशी से नाचने लगते थे। जान से भी बढ़कर प्यार करता था। शिवशंकर सिंह की आंखें आंसू से धुंधली हो रही हैं। जब तक हरगौरी की लाश नहीं मिली थी उन्हें अपने गिरफ्तार होने का डर लगा हुआ था। दाह क्रिया समाप्त करके वकील साहब ने रामकृपाल सिंह को रोका तो शिवशंकर सिंह को लगा कि पुल नीचे धंस रहा है, धरती हिल रही है। दारोगा साहब रामकृपाल सिंह को गिरफ्त करके इधर ले गए और शिवशंकर सिंह अपने साथियों के साथ वहीं से लौट गए। टीसन तक दौड़ते ही आए थे, न जाने दारोगा साहब के मन में कब क्या हो। भाग की बात हुई कि बीरज सिंह फिसल कर गिर गए और गाड़ी खड़ी हो गई, नहीं तो शिवशंकर सिंह वहीं प्लेटफार्म पर ही खड़े रह जाते। सबने तो कूद कूद कर हत्था पकड़ लिया। सिंह जी ने ज्यों ही एक हत्था में हाथ लगाया कि एक काले कोट वाले ने पकड़कर खींच लिया। सिकंदर के पास जाते जाते बिरजू सिंह गिर गए तो गाड़ी खड़ी हो गई। बेचारे बिरजू सिंह का एक हाथ कट गया। गार्ड बाबू उसको कटिहार अस्पताल ले गए। जब तक घर नहीं पहुंच गए थे शिवशंकर सिंह को भरोसा नहीं था, क्या जाने किधर से लाल पगड़ी वाला निकल पड़े। हसलगांव हाट के पास एक लाल चादर वाले को देखकर उनका कलेजा धुक धुक हुआ था। भले आदमी ने लाल चादर की पगड़ी क्यों बांध ली थी। घर जाते ही हरगौरी की माँ को छाते पीटते और जमीन पर लोट कर रोते देखा तो वे भी बच्चों की तरह बिलख बिलख रोने लगे। उबरिया घर के औसारे पर हरगौरी की विधवा बहू घूंघट काढ़े रो रही थी। सामने दीवार पर हरगौरी का फोटो टंगा हुआ है, रौतहट मेला में छपाया था, पगड़ी बांधकर हाथ में तलवार लेकर।
बेटा रे गौरी बेटा रे,
शिवशंकर सिंह बैल के गर्दन पकड़कर रो रहे हैं। बेटा रे गौरी बेटा रे, सुमृतदास के कान में सबसे पहले आवाज पहुंचती है। ओ शिवशंकर सिंह आ गए शायद। शिवशंकर बाबू रोइए मत, देखिए कलेजा पोख्ता कीजिए, आप ही इतना जी छोटा कीजिएगा तो औरतों का क्या हाल होगा। हे हरगौरी की माँ मर जाएगी, उसको समझाइए सिंह जी, रोइए मत। सुमृतदास शिवशंकर सिंह को अखबार में पकड़ कर ले जाते हैं, समझाते हैं तथा आसपास खड़े लोगों से कहते हैं, भाई क्या समझाया जाए, किसको समझाया जाए, पुत्र शोक से बढ़कर और कोई शोक क्या हो सकता है, हम क्या समझाएंगे, हमको तो खुद भोगा हुआ है।
एक एक कर 4 लाल को कमला किनारे अपने हाथ से जला आए हैं, कलेजा पत्थर हो गया है, पुत्र शोक हे भगवान किसी को ना हो।
शिवशंकर सिंह और जोर जोर से रोने लगते हैं। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाती है, सभी आकर यही जानना चाहते हैं कि और आगे क्या हुआ। हरगौरी की मृत्यु से ज्यादा दिल दहला देने वाली बात थी रामकृपाल सिंह की गिरफ्तारी। क्यों गिरफ्तार किया, कैसे गिरफ्तार हुआ और किन लोगों पर वारंट है, तहसीलदार बिस्नाथ पर भी।
तहसीलदार साहब आ रहे हैं, मोढ़ा दोरे।
तहसीलदार को देखते ही शिवशंकर सिंह फिर धरती पर लेट गए और जोर जोर से रोने लगे।
बिस्नाथ भैया कलेजा टूक टूक हो रहा है भैया।
तहसीलदार साहब समझाते हैं, शिवशंकर सिंह जी रोइए मत, ये रोना तो जिंदगी भर के लिए मिला है, एक दिन रोने से दिल ठंडा नहीं होगा, लेकिन अभी रोने का समय नहीं, मालूम होता है मुकदमा खराब हो गया। सिंह जी के गिरफ्तार होने का मतलब ही मुकदमा खराब हो गया, अब किसके सर पर कौन आफत है कौन जाने, खूनी केस है, उठिए आपसे प्राइवेट में बात करना है। शिवशंकर सिंह तुरंत उठकर खड़े हो गए और तहसीलदार साहब के साथ दरवाजे से जरा दूर चले गए। सुमृतदास प्राइवेट सुनेगा,
तब ठीक है, असल बात का पता भी तुरंत लग जाएगा। दरवाजे पर खड़े सभी एक ही साथ लंबी सांस छोड़ते हैं। अब किसके सर पर क्या आफत है कौन जाने। हे भगवान, प्रणाम ज्योतकी काका। ज्योतकी काका के साथ खिलावन भी आया है। ज्योतकी जी पास के खाली मोड़े पर बैठ जाते हैं। खिलावन भी तहसीलदार साहब के प्राइवेट में जाकर शरीक हो जाता है। ज्योतकी जी धीमी आवाज में लोगों से कहते हैं, तुम लोग यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो। उनके कहने का ढंग ही ऐसा था जिसके माने निकलते थे, तुम लोगों की जान बुलाई हुई क्या, यहाँ से जितना जल्दी हो सके खिसक जाओ, वरना क्या ठिकाना। सब जल्दी से मौका देखकर उठ खड़े होते हैं। ज्योतकी जी कहते हैं, यही चले आइए तहसीलदार, सभी चले गए। लेकिन बात यह है कि एसपी ने तो ये नुक्स पकड़ा है, तहसीलदार विश्वनाथ की जमीन का बिहन बचाने के लिए तहसीलदार हरगौरी क्यों गया था। तहसीलदार साहब कहते हैं, राम कृपाल भैया तो है नहीं, हम आपको क्या क्या कहें, लेकिन मुकदमा तो आपका ही है, वाजिबन खर्चा तो आपको ही देना चाहिए। शिव शक्कर सिंह गिड़गिड़ा कर कहते हैं। ज्योतकी जी कुछ कहने के लिए खखारते हैं, लेकिन सुमृतदास बेतार बीच में जवाब देता है, शिव शक्कर सिंह मुकदमा तहसीलदार विश्वनाथ का नहीं, तहसीलदार हरगौरी का है, पूछिए कैसे। तो बात यह है कि असल में ये सब खूंखार बेदखली नीलामी तो हरगौरी बाबू ने ही शुरू किया था, हमसे ज्यादा कौन जानेगा। तहसीलदारी कारोबार को आप क्या समझिएगा, यदि बेदखली और नई बंदोबस्ती की बात नहीं उठती तो गांव में ये लंका कांड नहीं होता। पहले तो तहसीलदार हरगौरी ने ही शुरू किया, तहसीलदार विश्वनाथ उनके मददगार हुए तो इन्हीं की जमीन पर संथालों ने धावा बोल दिया। अब बताइए कि असल में ये मुकदमा किसका हुआ। असल बात हम जानते हैं, दारोगा को 10,000 देना ही होगा। खिलावन कहता है, तहसीलदार अब जैसे भी हो सबको सलाह करके गांव के इस घर को टालिए, रामकृपाल भैया है नहीं हम क्या कहेंगे। शिव शक्कर सिंह बस यही एक जवाब देते हैं। बहुत देर के बाद ज्योतकी जी कहते हैं, जो भी हो न्याय बात तो यही है कि विश्वनाथ बाबू इस मुकदमे में अभी पूरी पैरवी करें। अंत में यही तय हुआ कि सबसे पहले रामकृपाल सिंह जी को जमानत पर छुड़ाया जाए, इसके बाद सब मिलकर जो वाजिब हो सोचें, जो खर्चा होगा सिंह जी लोगों को देना होगा। ज्योतकी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज सोशलिस्ट लोग शोक सभा करने गए, एक भी आदमी सभा में नहीं गया, अब लोग सभा का अर्थ समझ रहे हैं। कोई बात हुई तो पुच से सभा, हम कहते थे ना गांव में एक दिन चील का गुड़ेगा। ज्योतकी काका सभा जुलूस को दोख मत दीजिए। कालीचरण बगल में अंधेरे में खड़ा था। आओ काली, तहसीलदार साहब हंसते हुए कहते हैं, तुम लोगों को गवाही देनी होगी, सो जानते हो ना, बालदेव जी को भी, तुम ही दोनों लीडरों की गवाही पर सारी बात है। कालीचरण ने मोड़े पर बैठते हुए कहा, गवाही देनी होगी तो देंगे, जो बात जानते हैं वो कहने में क्या है, दारोगा हो एसपी हो चाहे मजिस्टर कलेक्टर हो, सच्ची बात कहने में किसको डर है। वाजिब बात वाजिब बात, ज्योतकी जी को छोड़कर बाकी सभी कहते हैं वाजिब बात। तहसीलदार साहब का नौकर रंजीत दौड़ता हाँफता आता है, कमली दैया फिर तो यहाँ क्या है, डॉक्टर के यहाँ जाओ। तहसीलदार साहब झुंझलाते हुए उठते हैं, भगवान जाने क्या दवा करते हैं डॉक्टर लोग, इतने दिन हो गए बीमारी 16 आना से 12 आना भी नहीं हुई, तो असल में बात खुल गई, मामले मुकदमे की 16 आने बाद जो है कालीचरण और बालदेव के हाथ में है। शिव हो शिव हो, ज्योतकी काका उठते हुए कहते हैं, काली बाबू कल जरा अपना हाथ दिखाना तो, देखें तुम्हारे हाथ की रेखा क्या कहती है, जन्मदिन का महीना याद है। ज्योतकी जी के पेट में डर समा गया। कालीचरण और बालदेव के ही हाथ में सब कुछ है तो वो जिसका नाम बतला दें वो गिरफ हो जाएगा तुरंत, और कालीचरण कालीचरण ही क्यों, बालदेव भी उन पर मन ही मन नाराज है, बालदेव का तो उतना डर नहीं, मगर कलिया शिव हो शिव हो।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।